हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अच्छा, उसके लिए तो अर्श ही बहुत है, सारे दिन मुझे अपने आगे पीछे नचाता रहता है और खूब वर्कआउट करवाता है मेरी, तभी तो आज तक मोटी नहीं हुई। ये बात भी ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आज तुम हमारे साथ चलो, इसलिए अब कोई बहाना नहीं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे और मैं काम में तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। प्रीति ने कुछ पल सोचा, फिर असमंजस भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, पर मैं ऐसे चलूँ आपके साथ? ऐसे से क्या मतलब है तुम्हारा? आयुष्मान प्रीति के सवाल का मतलब नहीं समझा और उलझन भरी निगाहों से उसे देखने लगा। प्रीति ने खुद की तरफ निगाहें घुमाते हुए कहा, मतलब इन्हीं कपड़ों में। आयुष्मान ने प्रीति को देखा, जिसने टी शर्ट और लोअर डाला हुआ था, फिर उसे देखते हुए भौं चुकाते हुए बोला, हाँ तो इन कपड़ों में क्या बुराई है? पाक ही जाना है हमें, वो भी सोसाइटी का पाक, नहीं कि किसी फैशन शो या पार्टी में जाना है जो तुम्हें कपड़े बदलने या तैयार होने की जरूरत पड़े। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर आंटी ने मुझे ऐसे देख लिया और कुछ कहने लगी तो। प्रीति ने अपनी चिंता आयुष्मान के सामने रख दी। अब जाकर आयुष्मान को माजरा समझ आया और उसके लबों पर मुस्कान खिल गई। ओफ़ वो प्रीति, उस वक्त आंटी ने तुम्हें टोका था क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी, पर अब तो हमारी शादी को 4 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, वो कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें, और अगर कह दें तो कहना कि मैं पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हें मुझे खुद से बांध कर रखने के लिए सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान की बात प्रीति को कुछ खास रास नहीं आई। प्रीति बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी और नाक भौं से कोड़ते हुए बोली, वक्त के साथ बहुत बेशरम होते जा रहे हैं आप, मैं आंटी को ऐसी बात कैसे बोल सकती हूँ? तुम कुछ मत बोलना, मैं बोल दूंगा, अब इस बहस को यहीं ख़त्म करो और जल्दी से शूज़ पहनकर बाहर आओ, मैं देखूँ ज़रा मेरा बेटा क्या कर रहा है बाहर। आयुष्मान ने प्यार से प्रीति के गाल को चूमा और वापस बाहर आया। उसने देखा कि अर्श सोफे पर पसरा हुआ था। आयुष्मान मुस्कराया, फिर उस बालक को अपनी बाहों में उठाकर किचन की तरफ निगाहें घुमाईं। प्रीति वहां से बाहर निकल रही थी। उसने बॉल ली, फिर जूते पहनकर तीनों नीचे पार्क में चले गए, जहां और भी लोग और बच्चे मौजूद थे। ठंडी हवा के स्पर्श करते ही अर्श की सारी नींद एक झटके में गायब हो गई, शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित हो गई। कुछ देर पार्क में घूमने के बाद आयुष्मान और प्रीति अर्श के साथ फुटबॉल खेलने लगे। उन्होंने खूब मस्ती की। नन्हा अर्श कभी यहाँ दौड़ता तो कभी वहाँ, और बॉल को किस मारकर खिलखिला उठता। खेलते खेलते आयुष्मान ने कितनी ही बार अर्श को अपनी बाहों में उठाकर उसे चूमा, कितनी ही बार उसके किक मारने पर उसे बाहों में उठाकर हवा में उछाल दिया और कितनी ही बार उसे बाहों में भरते हुए खूब प्यार किया। सब उन बाप बेटे की जोड़ी को देख रहे थे। अर्श और आयुष्मान को साथ में फुटबॉल खेलते और इतना एंजॉय करते देखकर प्रीति को वो दिन याद आ गया जब शादी के बाद वो पहली बार आयुष्मान के साथ पार्क आई थी और आयुष्मान को बच्चों के साथ खेलते मस्ती करते देखकर उसके मन में ख्याल आया था कि क्या आयुष्मान उसके बच्चे के साथ भी ऐसे ही खेलेगा। उसके उस सवाल का जवाब प्रीति को मिल चुका था और वो खुश थी। ढेर सारी मस्ती मजाक के बाद तीनों वापस फ्लैट पर लौट आए। आयुष्मान ने अर्श को भी नहलाया। प्रीति दोनों के कपड़े निकालकर किचन में चली गई। आयुष्मान खुद भी तैयार हुआ और अर्श को भी तैयार किया, फिर उसे टीवी में कार्टून लगाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद किचन में प्रीति की मदद करने चला गया। प्रीति उसका लंच बना चुकी थी। अर्श ने नाश्ता तैयार किया। इतने में प्रीति नहा धोकर चली आई, क्योंकि आयुष्मान का नियम था कि तीनों साथ में ही नाश्ता करेंगे। पहले तीनों ने पूजा की, फिर साथ बैठकर नाश्ता किया। इतने में आयुष्मान के जाने का वक्त भी हो गया। नन्हा अर्श रूम से उसका ऑफिस बैग ले आया, जो उससे ठीक से उठ भी नहीं रहा था। प्रीति उसका लंच लेकर आ गई। अर्श से बैग लेकर आयुष्मान ने लंच अंदर रखा, फिर झुककर अर्श के माथे को प्यार से चूम लिया। फिर उसने निगाहें उठाई तो प्रीति मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी। आयुष्मान ने अर्श की आंखों को अपनी हथेली से ढक दिया और झट से प्रीति के लबों को हल्के से चूम लिया। इसके साथ ही प्रीति की सारी नाराजगी दूर हो गई और अधरों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई। आयुष्मान ने अर्श और प्रीति दोनों को बाय किया, फिर ऑफिस के लिए निकल गया। नीचे पहुंचकर उसने सर उठाकर बालकनी की तरफ देखा तो प्रीति और उसकी बांह पर बैठा अर्श दोनों वहां खड़े थे। आयुष्मान ने हाथ हिलाकर दोनों को बाय किया तो उन्होंने भी आयुष्मान को बाय किया। प्रीति के कहने पर अर्श ने आयुष्मान को फ्लाइंग किस भी दी। फिर आयुष्मान अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। वहीं पेड़ के पीछे खड़े शख्स ने आयुष्मान की जाती हुई गाड़ी को देखा, फिर बालकनी में मौजूद प्रीति और अर्श को देखने लगा। पर कुछ ही पल बाद प्रीति अर्श को लेकर अंदर चली गई और वो साया एक बार फिर गायब हो गया। प्रीति ने किचन का काम निपटाया। इतने में मेड आ गई। साफ सफाई झाड़ू पोंछा के लिए आज भी उनके घर मेड आती थी। प्रीति ने बहुत बार आयुष्मान को कहा भी कि अब तो अर्श बड़ा हो गया है तो वो कर लेगी खुद से सब, पर आयुष्मान ने उसकी एक नहीं सुनी। मेड बस झाड़ू पोंछा ही करती थी, बाकी काम प्रीति ही करती थी। सुबह आयुष्मान के जाने तक उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। उसके जाने के बाद प्रीति अपने रोज के कामों में लग गई। उसने पहले बेड झाड़कर चादर बदली, रूम व्यवस्थित किया, फिर तीनों के कपड़े धोने लगी। ड्राइंग रूम में बैठा अर्श अपने टॉयज से खेलने में व्यस्त था। इतने में प्रीति ने अपने सभी काम निपटा लिए। मेड भी अपना काम करके जा चुकी थी। प्रीति ने कुछ देर अर्श के साथ खेला, फिर उसे पढ़ाते हुए अगले वीडियो के लिए अपने नोट्स तैयार करने लगी। उसके बाद उसने अर्श को खाना खिलाकर सुला दिया। खुद भी लंच करके थोड़ी देर आराम किया।